सफ़ा नंबर 434। जब गुफ्तगू के दौरान इसरार खुदी में हाफिज पर नुक्ता चीनी के सिलसिला में हल्का सूफिया की ब्रह्मी का जिक्र आया तो इकबाल ने कहा कि मैंने हाफिज की ज़ात और शख्सियत पर इतराज़ नहीं किया, बल्कि मैंने तो सिर्फ एक असूल की वजाहत की है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुसलमानान हिंद पर अजमी तसूफ का इस कदर गलबा है कि वो जहर को आब हयात समझने लगे हैं। इस पर शेख नूर मोहम्मद गोया हुए कि हाफिज के अकीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुँचाए बगैर भी तो इस असूल की तशरीह हो सकती थी। इकबाल ने जवाब दिया कि यह हाफिज परस्ती भी तो बुत परस्ती से कम नहीं। शेख नूर मोहम्मद ने फरमाया कि अल्लाह और इसके रसूल ने तो बुतों को भी बुरा कहने से मना किया है, इसलिए मसनवी के वो अशार जिन पर अकीदतमंदान हाफज को इतराज़ है हजफ कर देने चाहिए। इकबाल कुछ ना बोले, बस मुस्करा कर रह गए। बाद में मसनवी की अशार दो में काबिल इतराज़ अशार दिबाचा और सर सैयद अली इमाम से मुतल्लक इन तसाबी अशार खारिज करके इकबाल ने बहस का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया और नए दिबाचे में तहरीर किया। इस मसनवी की पहली एडिशन 1915 में शाया हुई थी। इस दूसरी एडिशन में जो अब नाज़रीन की खिदमत में पेश की जाती है, बाज लफ्जी तरमीम है, बाज जगह अशार के तरतीब में फ़र्क है और एक आध जगह तशरीह मतालब के लिए अशार का इजाफा है, लेकिन सबसे बड़ी तरमीम यह है कि इस एडिशन से वो अशार खारिज कर दिए गए हैं जो ख्वाजा हाफज पर लिखे गए थे, अगरचा इनसे महज एक अदबी नसब बुलैन की तनकीद मकसूद थी और ख्वाजा हाफज की शख्सियत से कोई सरोकार ना था। ताहम इस ख्याल से कि ये तर्ज़ बयान अक्सर हबाब को नागवार है, मैंने इन अशार को निकाल कर इनकी जगह नए अशार लिख दिए हैं जिनमें इस असूल पर बहस की है कि जिसकी रोह से मेरे नज़दीक किसी कौम के लिटरेचर की कदर कीमत का अंदाज़ा करना चाहिए। पहली एडिशन के उर्दू दिबाचे की अशात भी ज़रूरी नहीं समझी गई। मसनवी की अशात अवलीन के साथ 12 सफ़ात पर फैला हुआ दिबाचा गलबन इसलिए हजफ किया गया कि मसले की जितनी वजाहत उन्होंने की वो असल मतलब के लिए नाकाफ़ी थी और जितनी वजाहत ज़रूरी थी वो ऐसी तफसील की मोहताज थी कि दिबाचा बजाए खुद एक किताब की सुरख अख्तियार कर लेता। इसी सिलसिला में उन्होंने हाफज मोहम्मद असलम जेरा जरापुरी को तहरीर किया। दिबाचा बहुत मुख्तसर था और अपने इख्तसार की वजह से गलतफहमी का बाइस था। जहाँ तक मसनवी के सर सैयद अली इमाम के नाम मानून होने का तल्लक है, इसकी दो वजूह पेश की जा सकती हैं। एक तो ये कि इकबाल अपने इस दोस्त के जज्बा इस्लामियत से मुतासर थे और इन्हीं एहतराम की निगाह से देखते थे। सर सैयद अली इमाम इस्लामी अखलाक और अदाब का बेमिसल नमूना थे। यूरोप में तलीम हासिल करने के बावजूद अरबी कसायद के अशार और फारसी असाज़ा का कलाम इन्हीं ज़बानी याद था। 1931 में इकबाल के साथ एक ही जहाज़ में दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लिस्तान गए। इकबाल इनके मतलब मुंशी तहरुद्दीन के नाम अपने खत में तहरीर करते हैं। सैयद अली इमाम को अरबी फारसी और उर्दू के बेशुमार अशार याद हैं और पढ़ते वक्त भी खूब हैं। अल वल्द सरातुल अबिया इनके वालद माजिद मौलाना नवाब अमदाद अदबियात उर्दू में एक ख़ास पाया रखते थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के हिंदू मुसलमान नुमाइंदे शायद 7-8 हैं। राजा नरिंदर नाथ साहब भी इसी जहाज़ में हैं। 4 मुसलमान नुमाइंदे हैं और चारों मगरब ज़दा मुसलमानों की इस्तलाह जो शायद आरफ ने वाज़े की है, नहायत पुर लतफ़ है, लेकिन मुसलमानों के इस मगरब ज़दा काफ़िले की कफ़ियत यह है, इसमें दो हाफ़िज़े कुरान हैं यानी नवाब साहब छतारी और ख़ान बहादुर हाफ़िज़ हदायत हुसैन मकदम ज़िक्र हर रोज़ विर्द करते हैं और सुना है कि हर साल तरावी भी पढ़ाते हैं। सैयद अली इमाम की मगरब जदगी की कफ़ियत यह है कि एक रोज़ सुबह के वक़्त अरशा जहाज़ पर खड़े थे, मैं भी इनके हमरा था, मील व फरसंग का हिसाब करके कहने लगे, देखो भाई इकबाल, इस वक्त हमारा जहाज़ साहल मदीना के सामने से गुजर रहा है। ये फ़िक्र अभी पूरे तौर पर इनके मुंह से निकला भी ना था कि आंसुओं ने अल्फाज पर सबकत की, इनकी आँख नम नाक हो गई और बेख्तियार होकर बोले, बालागल सलामी रोज़ातुल फी हब नबिया अल मोहतरम। इनके कलब की कफ़ियत ने मुझे बे इंतहा मुतासर किया। बाकी रहा मैं मगरब ज़दा भी हूँ और मशरक ज़दा भी, अलबत्ता मशरकी ज़रब मेरे लिए ज़्यादा कारी साबित हुई। दूसरी वजह यह है कि इब्तदाई अयाम में इकबाल की यह ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह हैदराबाद दक्कन को इस्लाम की दीनी फिक्री इल्मी और तमदनी अहया का मरकज़ बनाया जाए। वो खुद भी वहाँ कोई मुनासब मुलाजमत हासिल करके मुंतकिल होना चाहते थे और निज़ाम की सरपरस्ती में तसनीफ़ व तालीफ का काम करने के आरजू मानते। हैदराबाद की इलम दोस्त और बाअसर शख्सियतों से इनकी वाकफियत थी। नवाब मीर महबूब अली खां इंतकाल कर चुके थे और नवाब मीर उस्मान अली खान निज़ाम थे। 11 जनवरी 1912 को महाराजा किशन प्रसाद ने मदारदुल महाम के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और 1 दिसंबर 1914 तक नवाब मीर यूसुफ अली खां सलार जंग मदारुल महाम रहे। फिर निज़ाम ने दीवानी और वजारत का कलमदान खुद संभाल लिया। सो जिस ज़माने में मसनवी इसरार खुदी शाया हुई इस वक्त सर सैयद अली इमाम हैदराबाद के वजीर आजम ना थे बल्कि निज़ाम ने खुद वजारत संभाल ली रखी थी और मलकत हैदराबाद बड़ी तनदही से इसलाहात की जानो गामगन थी। चूँकि निज़ाम के लिए ब्याक वक्त सरबराही और वजारत में दखल देना रखना मुमकिन ना था इसलिए अफवाह गर्म थी कि अंग्रेज़ी हुकूमत से सर सैयद अली इमाम की खिदमात मस्तार हासिल की जाएंगी। इकबाल का ख्याल था कि इस मरहले पर अगर सर सैयद अली इमाम वज़ीर आज़म मुकर्रर हो गए सफ़ा नंबर 437 तो मुमकिन है कि रियासत में इस्लाम के तमदनी अहया के लिए कोई मुसबत कदम उठाया जा सके। इसी तवक्का के पेश नज़र मसनवी की अशात अवलीन को सर सैयद अली इमाम के नाम महनून किया गया। बिलाकर 1919 में सर सैयद अली इमाम का तकर्र बतौर सदर अल महाम हो गया। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए कई मनसूबे तैयार किए जिनमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क्याम भी था। 4 साल की मुद्दत तक सदर अल महाम रहकर 1922 में वो अपने ओहदे से सबकदोश हुए। फिर 1926 से लेकर 1937 तक महाराजा किशन प्रसाद सदर महाम रहे। इनके अलग होने पर 1937 से सर अकबर हैदरी का 2 रोज ज़ारत शुरू हुआ। ये जिक्र किया जा चुका है कि नौजवान मुस्लिम सियासी कायदीन का लीग की पुरानी क्यादत से इतमाद उठता जा रहा था और वो हिंदुओं से मुफाहमत करना चाहते थे। इसी बिना पर लीग और कांग्रेस के इजलास साथ साथ होने लगे। बिलासर 1916 में मुस्लिम और हिंदू रहनुमा लखनऊ में इकट्ठे हुए और मोहम्मद अली जिना की क्यादत में लीग और कांग्रेस के दरमियान मिसाक लखनऊ तय पा गया। यूं बकौल तफैल अहमद मुस्लिम लीग मौलाना शिबली की ख्वाहिश के मुताबिक सही मानों में सियासी जमात बन गई। कांग्रेस लीग समझौते में हिंदुओं ने मुसलमानों की जुदाकाना नियाबत का हक तो तस्लीम कर लिया लेकिन मुस्लिम अक्सरीती सूबों यानी पंजाब और बंगाल में इनको अक्सरियत से महरूम करके सिर्फ मसावात का हक दिया और इनकी जायद नशिस्तों को अकलीतों में बांट दिया गया। इसके मुआवजे में मुस्लिम अकलीती सूबों में मुसलमानों को अजाफी नशिस्तें दी गई। मिसाल के लखनऊ की तस्दीक व तोसीक के वक्त मुस्लिम अक्सरीती इलाकों यानी सरहद 91% मुस्लिम और 7% हिंदू और बलूचिस्तान 87% मुस्लिम और 11% हिंदू पर चीफ कमिश्नरों के जरिए हुकूमत की जाती थी और इनमें 1909 में ये दस्तूरी असलाहत नाफज ना थी। इसी तरह सिंध 75% मुस्लिम और 19% हिंदू का अलहाक बम्बई प्रेजिडेंसी के साथ किया गया और इस सूरत में दोनों की आबादी का तनासब 77% हिंदू और 19% मुस्लिम हो गया था। गोया मिसाक लखनऊ के वक्त दस्तूरी एतबार से सिर्फ पंजाब और बंगाल ही 2 मुस्लिम अक्सरियती सूबे थे जिनमें मुसलमानों को अक्सरियत से महरूम कर दिया गया था। बाकी तमाम सूबों और मरकज़ में तो हिंदुओं की वाज़ेह अक्सरियत थी इसलिए मुसलमानों को अजाफी नजिस्तें मिलने से इन्हें कोई हकीकी फ़ायदा पहुँच सकने का अमकान ना था। जिन मुस्लिम कायदीन ने मिसाक लखनऊ की तस्दीक की इनमें से बेशतर मुस्लिम अकलीती सूबों से तल्लक रखते थे। मुस्लिम अक्सरीती सूबा पंजाब से सर मोहम्मद शफी इस मिसाक के हक में ना थे अलबत्ता सर फजल हुसैन ने इसकी हमायत की और पंजाब की तरफ से मिसाक लखनऊ पर दस्तखत किए। इकबाल गो अमली सियासत से तल्लक ना रखते थे फिर भी मिसाक लखनऊ के हक में ना थे। अब्दुल मजीद सालक तहरीर करते हैं इलामा इकबाल इस मिसाक के मुखालफ थे क्योंकि इसके मतहत मुस्लिम अक्सरियत वाले सूबों में मुसलमानों को मौसर इकतदार ना मिलता था और मुस्लिम अकलीत वाले सूबों में पासिंग की वजह से इनको कोई ख़ास फ़ायदा ना पहुंचता था। इसके अलावा अलामा इकबाल का ख्याल था कि ऐसा मिसाक इसी सूरत में मुफीद हो सकता है कि हिंदुस्तान में कौमियत मुतद्दा की दाग बैल डालना मंजूर हो और हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में कौमियत मुतहदा की तमीर नामुमकिन है ना इसके लिए कोशिश करना मुफीद है। इसमें कोई शक नहीं कि मिसाक लखनऊ 2 मजहबी मिलतों या कौमों के दरमियान तय पाया लेकिन यह एक गैर हकीकी समझौता था और बाद की ترک موالات کی تحریک سے ظاہر ہو گیا کہ مفراقین کی نیت میں فرق تھا۔ مسلم سیاسی رہنماؤں کی اکثریت اس معاہدے کے باوجود مسلمانوں کو الگ قومی تشخص برقرار رکھنا چاہتی تھی، دوسری طرف ہندو قیادت جداگانہ نیابت کے اصول کو تسلیم کر لینے کے باوجود انہیں قومیت متحدہ میں مدغم کرنے کے درپے تھی۔ اس لیے مساکل لکھنؤ ہندو اور مسلمانوں کو وقتی طور پر تو ایک دوسرے کے قریب لے آیا، لیکن حقیقی معنوں میں ان کے بعد کا خاتمہ نہ کر سکا۔ صفحہ نمبر 439۔ 1917 میں شاہ آباد اور آرا میں مسلم کشف فسادات برپا ہوا اور 40 مربع میل کے رقبے میں ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کے 129 گاؤں تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی سال مانٹی گو ہندوستان آیا اور 1909 کی دستوری اصلاحات پر مساکل لکھنؤ کی روشنی میں نظر ثانی نے 1918 میں مانٹی گو چیف سفورڈ ڈپورٹ کی صورت اختیار کی۔ بعد میں اسی رپورٹ کی بنیاد پر گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 منظور کیا گیا، جس کا عملی نفاذ ہندوستان میں 1921 میں ہوا۔ بہرحال ان سیاسی جھمیلوں سے لاتعلق اقبال ایک گاؤں کی تنہائی میں گرمیوں کے موسم میں مثنوی اسرار خودی کے حصہ دوم یعنی رموز بے خودی لکھنے میں مصروف رہے۔ 1917 میں اقبال کی توجہ ایک بار پھر حیدرآباد کی طرف مبذول ہوئی۔ سید ہاشم بلگرامی کے انتقال سے حیدرآباد ہائی کورٹ میں جج کی اسامی خالی تھی۔ اس کے لیے منشی دین محمد مدیر میونسپل گزٹ لاہور نے اقبال کا نام تجویز کیا اور اس سلسلہ میں ایک خط بھی مہاراجہ کشن پرشاد کو تحریر کیا۔ مہاراجہ کشن پرشاد نے ان کے خط کے جواب میں جو لکھا، اقبال نے اس کا شکریہ ان الفاظ میں ادا کیا۔ اخباروں میں کئی دنوں سے یہ بات چکر لگا رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ پنجاب اور یو پی کے اکثر اخباروں اور مخزن دکن نے بھی لکھا ہے، مگر سرکار کو میں نے عموداً اس بارے میں کچھ نہ لکھا، زیادہ تر اس وجہ سے کہ اگر کوئی امکان اس قسم کا نکلے تو سرکار کی مساحی پر مجھے پورا اعتماد تھا۔ انہی وجوہ سے باوجود اس بات کے کہ سرکار کے قریب اور ذل عطف میں رہنے کا خیال مدت سے دامن گیر ہے، میں نے سرکار کی خدمت میں کچھ لکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ میں نے اب تک اپنے معاملات میں ذاتی کوشش کو بہت کم دخل دیا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو حالات کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور نتیجہ سے خواہ وہ کسی قسم کا ہو خدا کے فضل و کرم سے نہیں گھبراتا۔ اس وقت بھی قلب کی کفیت یہی ہے کہ جہاں اس کی رضا لے جائے گی جاؤں گا۔ دل میں یہ ضرور ہے کہ اگر خدا کی نگاہ انتخاب نے مجھے حیدرآباد کے لیے چنا تو اتفاق سے یہ انتخاب میری مرضی کے بھی عین مطابق ہے۔ پنجاب اور یو پی کے اخباروں میں چرچا ہوا تو اقبال کو مبارکباد کے تار آنے لگے، لیکن پنجاب کے موکلوں کو جن کے مقدمات اقبال کے سپرد تھے بہت پریشانی ہوئی۔ بلاخر مخبر دکن سے اقبال کو جب یہ معلوم ہوا کہ حیدرآباد ہائی کورٹ کے ججی کے لیے چند نام نظام کے زیر غور ہیں جن میں سے ایک نام ان کا بھی ہے، تو انہوں نے مہاراجہ کشن پرشاد کو اپنے خط محررہ 15 اپریل 1918 میں اپنی تعلیمی کامیابیوں اور تصنیفی خصوصیات کا ذکر تفصیل کے ساتھ کرتے ہوئے امداد کے لیے لکھا، باقی جو کچھ میرے حالات میں ہے وہ سرکار پر بخوبی روشن ہے، ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ اسلام میں اس وقت ایک مفصل کتاب با زبان انگریزی زیر تصنیف ہے، جن کے لیے میں نے مصر و شام و عرب سے مسالہ جمع کیا ہے، جو انشاءاللہ بشرط زندگی شائع ہوگی، اور مجھے یقین ہے کہ اپنے فن میں یہ ایک بے نظیر کتاب ہوگی۔ میرا ارادہ ہے کہ اس کتاب کو تفصیل مسائل کے اعتبار سے ایسا ہی بناؤں جیسی کہ امام نصفی کی مبسوط ہے جو 60 جلدوں میں لکھی گئی تھی، مگر قدرت کو اقبال کا حیدرآباد جانا منظور نہ تھا۔ اسی طرح فقہ اسلام پر انگریزی میں مفصل کتاب لکھ پانے کی بھی فرصت انہی کبھی نصیب نہ ہوئی، اور یہ کام ان کے عزائم کی فرصت ہی میں رہ گیا۔ کچھ ماہ بعد سر اکبر حیدری نے انہی حیدرآباد میں قانون کی پروفیسری کی پیشکش کی اور پوچھا کہ اگر انہی پرائیویٹ پریکٹس کی بھی ساتھ اجازت ہو تو کیا تنخواہ لیں گے، لیکن اقبال کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا کہ ابھی حیدرآباد میں ان کی ضرورت نہ تھی، اور سر اکبر حیدری انہی محض اس لیے بلا رہے تھے کہ وہ یونیورسٹی اسکیم کے متعلق ان سے مفصل گفتگو کر سکیں۔ اقبال چونکہ اس وقت اخراجات کے متحمل نہ ہو سکتے تھے، اس لیے انہوں نے حیدرآباد جانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ 1917 ہی میں اقبال کی ملاقات چودھری محمد حسین 1894 تا 1950 سے ہوئی۔ ان ایام میں چودھری محمد حسین اسلامیہ کالج کے طالب علم تھے، اور ہنری مارٹن پرنسپل اسلامیہ کالج کے کہنے پر انہوں نے نواب سر ذوالفقار علی خان کے بچوں کی تعلیقی قبول کر لی تھی۔ چونکہ اقبال کا نواب سر ذوالفقار علی خان سے گہرا دوستانہ تھا، اس لیے چودھری محمد حسین کو ان سے ملاقات کے مواقع ملنے لگے۔ اقبال نے ان کی مخلص دینداری کو بھانپ لیا اور پھر ایسا اپنایا کہ مرتے دم تک نہ چھوڑا۔ 1926 में इकबाल ही के इसरार पर चौधरी मोहम्मद हुसैन ने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में मुलाजमत कर ली। इकबाल का कबूतरों से बड़ा उनस था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मदीना मुनवरा का एक कबूतर हासिल करके पाला था और इसकी देखभाल बड़े अहतमाम से करते थे। बदकिस्मती से 20 अक्टूबर 1917 को वो कबूतर किसी बिल्ली की चीरा दस्ती का शिकार हो गया। इकबाल इस वाक़े से बेहद मगमूम हुए और नज़म बानवान मदीने के कबूतर की याद में तहरीर की। इन्हीं अजाम में इन्हीं ये ख्याल भी आया कि अगर किसी अच्छी नस्ल के पालतू कबूतर को हरेल सबज रंग के जंगली कबूतर की किस्म से मिलाया जा सके तो नई नस्ल वजूद में लाई जा सकती है। इस मकसद के लिए इकबाल चंद बरस तक मुख्तलिफ तजर्बे करते रहे लेकिन कामयाबी ना हुई। 1917 के अवाखर में रमूज़े बेखुदी मुकम्मल हुई। इकबाल अलबत्ता इकबाल मसनवी के तीसरे हिस्से बानवान हयात मुस्तकबला इस्लामिया तहरीर करने पर भी गौर कर रहे थे। चुनचा ग्रामी के नाम खत में लिखते हैं, सफ़ा नंबर 442, मगर अब तीसरा हिस्सा ज़ेहन में आ रहा है और मज़ामीन दरिया की तरह उमड़े आ रहे हैं और हैरान हो रहा हूँ कि किस किस को नोट करूँ। इस हिस्से का मजमून होगा हयात मुस्तकबला इस्लामिया यानी कुरान शरीफ से मुसलमानों की आइंदा तारीख पर क्या रोशनी पड़ती है और जमात इस्लामिया जिसकी तासीस दावत इब्राहिमी से शुरू हुई क्या क्या वाक़यात व हवादस आइंदा सदियों में देखने वाली हैं और बिलाकर इन सब वाक़यात का मकसूद वाक़ियत क्या है। मेरी समझ और इलम में ये तमाम बातें कुरान मजीद में मौजूद हैं और इस तदलाल ऐसा साफ़ और वाज़े है कि कोई ये नहीं कह सकता कि तावील से काम लिया गया है। ये अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम है कि इसने कुरान शरीफ का ये मख़फ़ी इलम मुझको अता किया है। मैंने 15 साल तक कुरान पढ़ा है और बाद आयात और सूरतों पर महीनों बल्कि बरसों गौर किया है और इतने तवील अरसे के बाद मंदरजा बाला नतीजे पर पहुंचा हूं, मगर मजमून बड़ा नाजुक है और इसका लिखना आसान नहीं। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया है कि इसको एक दफ़ा लिख डालूंगा और इसकी अशात मेरी ज़िंदगी के बाद हो जाएगी या जब इसका वक़्त आएगा अशात हो जाएगी। इसी तरह इस अरादे का इजहार रमूज़े बेखुदी की अशात के बाद अकबर अलाबादी से भी अपने एक ख़त मुहर्रा 28 नवंबर 1918 में किया और तीसरे हिस्से के चंद अशार भी नहीं लिखे, मगर इस अज़म ने भी कभी अमली सूरत अख्तियार ना की और तीसरे हिस्से के लिए महज चंद अशार 5 साल बाद प्याम मशरक में शामिल कर दिए गए। रमूज़े बेखुदी अप्रैल 1918 में शाया हुई अशात अवलीन के दिबाचे में इकबाल ने अपने उस्ताद मौलाना मीर हसन और ग्रामी का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया कि इन दोनों हजरात से इन्हीं बाल अशार की ज़ुबान और तर्ज बयान के मतलब काबिल कदर मशवरे मिले। किताब के मौजू के बारे में फरमाते हैं, अफराद की सूरत में एहसास नफ्स का तसलसल कुव्वत हाफजा से है, अकवाम की सूरत में इसका तसलसल व इस्तेहकाम कौमी तारीख की हिफाजत से है। गोया कौमी तारीख हयात मलिया के लिए ब मंजल कुव्वत हाफजा के है जो इसके मुख्तलिफ मराहिल के हसासियात व अमाल को मरबूत करके कौमी अना का ज़मानी तसलसल महफूज व कायम रखती है। इल्मुल हयात व इमरानियात के इसी नुक्ते को मद्देनजर रख कर मैंने मिल्लत इस्लामिया की हयत तरकीबी और इसके मुख्तलिफ अज्जा व अनासर पर नज़र डाली है और मुझे यकीन है कि उम्मत मुसलमा की हयात का सही अदराक इसी नुक्ता निगाह से हासिल हो सकता है। सर अब्दुल कादर मसनवी के इस हिस्से की वजह तसनीफ इकबाल ही की ज़ुबानी बयान करते हुए लिखते हैं, डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं अब्दुल रहमान बंजूरी की अलमी व अदबी सलाहियतों का बड़ा मुतारफ़ हूँ बल्कि एक अतबार से ममनून भी हूँ। वो यूँ कि जब इसरार खुद ही शाया हुई तो बंजूरी ने एक तनकीती मजमून लिखा जिसमें खुद ही के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस करने के बाद ये कहा कि इकबाल फ़र्द की खुद ही पर इतना ज़ोर दे रहा है कि इससे ये खौफ पैदा हो चला कि शायद इसके पेशे नज़र मिल्लत का वजूद नहीं, हालांकि इनफरादी खुद ही की तकमील भी मिल्लत ही में गुम होकर होती है। बंजोरी के इस मजमून के बाद मैंने ज़रूरी समझा कि रमूज़े बेखुदी लिख कर इस किस्म के अंदेशों का अजाला कर दूँ। मैं नहीं कह सकता कि अगर बंजोरी का मजमून ना छपता तो रमूज़े बेखुदी लिखी जाती या ना लिखी जाती, लेकिन ये वाक़या है कि बंजोरी का मजमून पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि रमूज़े बेखुदी का लिखा जाना बेहद ज़रूरी है। इसी तरह नियाज़ुद्दीन खां के नाम एक ख़त मुहर्रा 27 जून 1917 में रमूज़े बेखुदी के मौजू पर इकबाल ने तहरीर किया, जहाँ तक मुझे मालूम है मिल्लत इस्लामिया का फ़लसफ़ा इस सूरत में इससे पहले कभी इस्लामी जमात के सामने पेश नहीं किया गया। नए स्कूल के मुसलमानों को मालूम होगा कि यूरोप जिस कौमियत पर नाज करता है वो महज बूंदे और सुस्त तारों का बना हुआ एक ज़ईफ़ चित्रा है। कौमियत के असूल हुक्का सिर्फ इस्लाम ही ने बताए हैं, जिनकी पुख्तगी और पायदारी मरवा अयाम व आसार से मुतासर नहीं हो सकती। रमूज़े बेखुदी का एक नुस्खा इकबाल ने निज़ाम हैदराबाद दक्कन को भी भेजा और इस नुस्खे के साथ एक फारसी नज़म खताब बा ताजदार दक्कन अरसाल की। असल में 1918 में जब निज़ाम अलीगढ़ गए तो सेक्रेटरी कॉलेज ने इकबाल को तार दिया कि इनके खैर मुकदम के लिए चंद अशार अलीगढ़ आकर पढ़े। इकबाल बावजह अदालत अलीगढ़ तो ना जा सके, लेकिन चंद हफ्तों बाद रमूज़े बेखुदी के नुस्खे के साथ ये नज़म निज़ाम को भेज दी। 1918 में जंग अजीम के अख्ताम से चंद माह कबल पंजाब के बाद इलाकों में एक मखसूस किस्म के इन्फ्लुंजा की वबा फूट पड़ी। किसी को मालूम ना था कि इस मर्ज़ का इलाज क्या है। फिर दवाओं का भी कहर था, जो दवाएं मौजूद थी इस आर्जे का मुकाबला करने से कासर थी, यहाँ तक कि डॉक्टर खुद इलाज करते करते मर्ज़ का शिकार हो जाते। लाहौर में तकरीबन 250 मवात रोज़ाना होती थी और इस तादाद की कमी की कोई सूरत नज़र ना आ रही थी। मर्दों को दफनाने के लिए गोरकन मिलने मुश्किल हो गए थे। यही हाल अमृतसर का था। इन्हीं एजाम में इकबाल को इस्लामिया कॉलेज के एम ए फ़लसफ़ा के तलबा को 2 माह के लिए पढ़ाना पड़ गया। फलसफे के प्रोफेसर हैग चीचक की बीमारी से वक्तफ़ता इंतकाल कर गए थे और अंजुमन हमायत इस्लाम ने इकबाल से दरख्वास्त की कि जब तक किसी नए प्रोफेसर का बंदोबस्त नहीं हो जाता वो तलबा को पढ़ाने की जिम्मेदारी कबूल करे। इकबाल ने अपने एक ख़त मुहर्रा 28 नवंबर 1918 में अकबर आलाबादी को तहरीर किया, ये लड़के शाम को हर रोज़ मेरे मकान पर आ जाते हैं, दिन में जो थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है। सफ़ा नंबर 445, इसमें इनके लेक्चर के लिए कुतुब देखता हूँ। लेक्चर क्या है? इंसान की ज़हनी मायूसियों और नाकामियों का फसाना है, जिसे हरफ आम में तारीख़ फ़लसफ़ा कहते हैं। अभी कल शाम ही इनको आपका ये शेर सुना रहा था। मैं ताकत ज़हन गैर मदूद जानता था, खबर नहीं थी कि होश मुझको मिला है तुल कर, नज़र भी मुझको मिली है नप के। बहरहाल इन लेक्चरों के बहाने से इन लड़कों के कान में कोई ना कोई मजहबी नुकता डालने का मौका मिल जाता है। 11 नवंबर 1918 को जंग अजीम ख़त्म हुई। इसके तकरीबन 1 माह बाद सर माइकल ओड वायर गवर्नर पंजाब ने ब्रेड लाल हॉल लाहौर में जश्न फतह के लिए एक बड़े जलसे का अहतमाम किया, जिसमें नवाब सर जुल्फकार अली खान के साथ इकबाल भी शरीक हुए और गवर्नर की फरमाइश पर चंद फारसी अशार भी पढ़कर सुनाए। इस दौर में इकबाल के कई तसनीफी अजाइम थे जिनकी तकमील कभी ना हो सकी। फिक्का इस्लाम पर अंग्रेज़ी किताब लिखने का इरादा तो आखिर वक्त तक रहा, मसनवी असरार व रमूज लिखने का सिलसिला भी बहुत पीछे तक जाता है। इकबाल लाहौर में दिसंबर 1898 के कानून के इब्तदाई इम्तिहान में कामयाब ना हुए थे और इन्हीं 1900 के कानून के इम्तिहान में ला स्कूल की क्लासों में शरीक हुए बगैर बैठने की इजाज़त ना मिली। इसलिए जाहिर है कि आला तलीम की खातिर इंग्लिस्तान जाने का अक्सर मकसद तो लंदन में इल्म कानून की तहसील था, जो इस ज़माने में दुनियादाराना ज़िंदगी में तरक्की की मनाजर तय करने के लिए ज़रूरी समझा जाता था। मगर आर्नल्ड से वाबस्तगी ने इनमें तहकीक के लिए जो तजस्स पैदा कर दिया, इसके सबब फ़लसफे में PhD की डिग्री लेने की ख्वाहिश इनके दिल में इब्तदा ही से पैदा हो चुकी थी। जहाँ तक तहकीक के लिए मौजू का तल्लक है, इकबाल इब्तदाई तरबियत और ख़ानदानी रुझान के ज़ेरे असर बिलाशुबा वजूदी या बकौल इनके अजमी तसव्वुफ़ की तरफ मायल थे। इसलिए तहकीक के लिए मौजू ईरान में फ़लसफ़ा माबाद तबियात का इर्तका इंतखाब किया। इस ज़माने में इकबाल ने ख्वाजा हसन निज़ामी की वसासत से शाह सुलेमान पुलवारवी से तसव्वुफ़ के बारे में चंद बुनियादी सवाल पूछे। मसलन कुरान मजीद में तसव्वुफ़ से मुतल्लक सरीन जो आयात हैं इनका पता दें। वहदतुल वजूद का मसला किन आयात से अखज़ किया जा सकता है? तारीखी अतबार से इस्लाम और तसव्वुफ़ का क्या रिश्ता है? क्या हज़रत अली को कोई पोशीदा तलीम दी गई थी वगैरह? और शाह सुलेमान फुलवारवी ने इन्हीं जवाबात भी भिजवाए, जिन्हें इकबाल ने अपने मकाले में तसव्वुफ़ के बाब में इस्तेमाल किया। इकबाल ने कैम्ब्रिज पहुंचते ही तहकीक का काम शुरू कर दिया था और जून 1907 यानी तकरीबन 1.5 या 1.25 साल में तहकीकी मकाला मुकम्मल करके म्यूनिख यूनिवर्सिटी भेज दिया। यह तहकीकी मकाला पहली बार 1908 में लंदन से शाया हुआ, मगर इस वक्त तक इकबाल के नज़रियात में तगैयर आना शुरू हो चुका था। इसी सबब उन्होंने मकाला को नाकस पाकर इसे दोबारा शाया करने की ज़रूरत कभी महसूस ना की। 1932 में इकबाल की जिंदगी ही में इस मकाले का उर्दू तर्जमा बानवान फलसफा अजम मीर हसनुद्दीन ने हैदराबाद दक्कन में किया। इकबाल ने इन्हीं तर्जमे की अशाद की इजाज़त देते हुए तहरीर फरमाया, ये किताब इससे 18 साल पहले लिखी गई थी। इस वक्त से नए अमूर का इंकशाफ हुआ है और खुद मेरे ख्यालात में भी बहुत सा इनकलाब आ चुका है। जर्मन जुबान में गजाली तुसी वगैरह पर अलहदा किताबें लिखी गई हैं जो मेरी तहरीर के वक्त मौजूद ना थी। मेरे ख्याल में अब इस किताब का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जो तनकीद की जद से बच सके। मकाले को बाद में इन्होंने नाकस इसलिए पाया कि इसमें तहरीर करदा बाद नताएज फिक्रे गलत थे। सफ़ा नंबर 447। मसलन गलती से जलालुद्दीन रूमी को भी वजूदी मकतबा फ़िक्र का तर्जमान तसव्वुर कर लिया गया। इसी तरह मंसूर हलाज के मतलब तहरीर था कि वो वादतुल वजूदी थे और एक सच्चे हिंदू वदनियाती की तरह उन्होंने अनल हक अहम बर हमा असमी कहा था। जलालुद्दीन रूमी की मसनवी के अमीक मुताले के बाद इकबाल का नज़रिया इनके बारे में तब्दील हो गया। इसी तरह जब फ्रांस में मिसनिया ने अपने तशरी नोटों के साथ किताबुल तवासीन शाया की तो मंसूर हलाज के मतलब भी इकबाल को अपना नज़रिया बदलना पड़ा। जद से नावाकफ होने के सबब ज़रतश्ती नज़रियात को भी वो सही तौर पर ना समझ सके थे और बाद में जब मौलाना सैयद मीर हसन की मदद से पहलवी जुबान में चंद कदीम मजूसी तहरीरों का मुताला किया तो मकाले का हिस्सा अव्वल यानी कबल इस्लाम फलसफा ईरान को गैर तसली बख्श करार दिया। ताहम मकाले में तसूफ के माखज और इकरान से इसके जवाज के बारे में इकबाल ने सूफियों के दावे का जिक्र किया है और इस सिलसिले में अपनी राय का इजहार वो यूं करते हैं, मैं अजमाली तौर पर ये बताऊंगा कि सूफी मुसन्निफीन अपने अपने ख्यालात को कुरान के नुक्ते नज़र से किस तरह जायज़ करार देते हैं। ये साबित करने के लिए कोई तारीखी शहादत मौजूद नहीं है कि पैगंबर अरब ने फिल वाकई हज़रत अली या हज़रत अबू बकर को कोई बातनी इलम सिखाया था। बहर सूरत सूफिया का ये दावा है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कुरान की तलीम के मा सवाए एक बातनी तलीम हिकमत भी दी थी। इस दावे की तायीद में वो कुरान सूरतुल बकरा आयत 146 पेश करते हैं। मेरे ख्याल में ये साबित किया जा सकता है कि कुरान व हदीस सहिया में सूफियाना नज़रिए की तरफ इशारात मौजूद थे लेकिन वो अरबों की खालस अलमी जहानत की वजह से नशोनुमा पाकर बार आवर ना हो सके। जब इनको ममालक गैर में मौजू हालात मैसर आ गए तो वह एक जुदागाना नज़रिए की सूरत में जलवा गर हुए। कुरान ने एक मुस्लिम की तारीफ की है कि वो गैब पर ईमान रखता है सूरत अल बकरा आयत 2 लेकिन इस गैब के मतलब क्या और क्यों कैसे जैसे हालात पैदा होते हैं इसका कुरान ने जवाब दिया है कि गैब तुम्हारी ही रूह के अंदर है। सूरतुल ज़ारियात आयत 20-21 और सूरत काफ आयत 15। इसी तरह कुरान की तलीम है कि इस गैब की असल माहियत खालस नूर है। सूरत अन्नूर आयत 35 इस सवाल के मतलब आया है कि नूर औला शख्सी है। कुरान ने शख्सियत के तसव्वुर को मुख्तलिफ अबारतों में पेश करने के बावजूद मुख्तसर अल्फाज में ये जवाब दिया है कि लैस कम साले ही शी है। सूरत शौरा आयत 9 ये चंद आयात हैं जिनकी बुनियाद पर सूफी मुफसरीन ने कायनात के एक वहदत तुल वजूदी नुक्ता नज़र को नमू दिया है। बस जाहिर है कि अगर इकबाल ने वजूदी तसव्वुर से इनहराफ किया या इस सिलसिले में इनके ख्यालात में तगैयर की कैफियत पैदा हुई तो तहकीकी मकाला तहरीर करते वक्त हुई। अब्दुल मजीद सालक तहरीर करते हैं कि PhD के मकाले के लिए मुतालिया व तहकीक के दौरान इन पर यह इंकशाफ हुआ कि मरवज़ तसव्वुर के अक्सर पहलू इस्लाम से कोई तल्लक नहीं रखते बल्कि इससे मगायदीर हैं। इस ज़माने के चंद साल बाद जब लाहौर में राकमुल हरूफ इकबाल से मिला तो एक सोहबत में उन्होंने बड़े शब्दोमद से फरमाया कि मैंने शेख अकबर महीउद्दीन इबन अरबी की फसूस अल हकम और शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी की हिकमतुल अशराक कोई 10-10 दफ़ा बिला अस्तियाब और नहायत गौरव गौर से पढ़ी है। इन बुज़ुर्गों के इल्मो ज़ौक में कोई कलाम नहीं लेकिन इन किताबों के अक्सर मंदरजात को इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। कम अज़ कम मैं इन्हीं अकायद व तलीमात इस्लाम से ताकब नहीं दे सकता। राकम की राय में 1907 के वस्त में तहकीकी मकाला म्यूनिक भेज चुकने के थोड़े अरसे बाद जब इकबाल अभी कैम्ब्रिज ही में मुकीम थे कि कल्बी और मजहबी انقلاب سے گزرے جس کے زیر اثر انہوں نے نہ صرف ملکوکیت استعمار اور وطنی قومیت کو رد کر دیا بلکہ اپنی تحقیق کی روشنی میں وجودی تصوف سے بھی منحرف ہو گئے۔ وجودی تصوف سے انحراف کی وجہ کیا تھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گو اقبال یورپی تمدن کے بیشتر پہلوؤں سے مایوس تھے، لیکن چند مثبت پہلو ایسے ضرور تھے جنہوں نے ان پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ یورپ میں فلسفے کی تدوین، نو علوم جدیدہ کی ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں تجسس، مشاہدہ اور تحقیق کے علم بہم سے یقیناً متاثر تھے۔ ان کی نگاہ میں مغرب جس اعتبار سے بیدار تھا، مشرق اسی اعتبار سے محو خواب تھا۔ اس مرحلے پر ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا کہ مسلمانوں کے انحطاط کا اصل سبب کیا ہے، اور غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وجودی تصوف کے سحر ہی نے ان کی قوت عمل کو شل کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی تائید اکرام الحق سلیم کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اقبال ابھی کیمبرج ہی میں تھے کہ ایک دن کسی انگریزی رسالے کے لیے اسلامی سیاست پر مضمون لکھنا شروع کیا۔ یکا یک ان کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے زوال کا نفسیاتی محرک کیا تھا۔ اس سوال کے جواب کے لیے انہوں نے بہت سی کتابیں دیکھ ڈالیں، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ اسی لمحے سے وہ مسلمانوں کے وجود تنزل پر غور کرنے لگے، اور اسی زمانے میں انہوں نے حقیقی اسلامیت کی بیداری کے لیے ایک نظام فکر ترتیب دینے کا کام شروع کر دیا۔ اقبال کا اپنا بیان ہے کہ 1908 میں جب وہ انگلستان سے واپس آئے تو ان کے دل میں کشمکش جاری تھی، اور وہ اپنی ادبیات میں روح پیدا کرنے کی غرض سے کوئی نیا سرمایہ حیات فراہم کرنا چاہتے تھے۔ وہ بالآخر 1910 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے خیالات ظاہر کر دینے چاہیے، اور انہی خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے مثنوی اسرار خود ہی لکھنا شروع کی۔ اقبال کی تحریروں سے یہ بھی واضح ہے کہ اپنے والد کی فرمائش پر بو علی قلندر کی مثنوی کی طرز پر ایک مثنوی لکھنا چاہتے تھے۔ بو علی قلندر سے تین مثنویاں منسوب ہیں، پہلی مخزن مانوی ہے، دوسری کلام قلندری صفحہ نمبر 450 کہلاتی ہے، اور تیسری کا کوئی نام نہیں، اور اسے صرف مثنوی بو علی قلندر قرار دیا گیا ہے۔ غلام رسول مہر فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اقبال اور ان کے والد کے پیش نظر یہی آخری مثنوی ہو، اور طرز سے مقصود صرف بہر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدا میں مختصر مثنوی لکھنے کا خیال ہو، لیکن جب موضوع پر غور و فکر کا سلسلہ شروع ہوا تو مزید مطالب سامنے آئے اور مثنوی کو پھیلانا پڑا، یہاں تک کہ وہ اس کے تین حصے لکھنا چاہتے تھے مگر صرف دو لکھ سکے۔ اس وقت رومی ان کے سامنے آیا اور ان کی مثنوی سے انتساب مناسب سمجھا گیا۔ نیز رومی مختلف مرحلوں میں ان کی فکری اور روحانی رہبری کرتے رہے۔ پس غلام رسول مہر کی رائے میں اس حقیقی اسلامیت کی بیداری کے لیے نظام فکر کی ترتیب نے ان کے ذہن میں مختلف شکلیں اختیار کی۔ شروع میں اس کی حیثیت کچھ تھی، پھر نئے نئے پہلو سامنے آتے رہے، حتیٰ کہ دو مثنویوں کا خاکہ ان کے ذہن میں مکمل ہو گیا۔ ایک کا تعلق حیات فرد سے تھا اور اس کا نام اسرار خود ہی رکھا، دوسری کا تعلق حیات ملت سے تھا، لہذا اسے رموز بے خودی سے معصوم کیا گیا، لیکن تیسری کو جس کا موضوع حیات مستقبلہ اسلامیہ تھا ضبط تحریر میں نہ آ سکی۔ 1916 میں انہوں نے تاریخ تصوف لکھنا شروع کی، مگر مطلب کا مسالہ نہ ملنے کے سبب وہ صرف دو ایک باب ہی لکھ کر رہ گئے۔ اسی طرح 1919 میں رامائن کو اردو کالب میں ڈھالنے کا قصد کیا، اور مہاراجہ کشن پرشاد کو لکھا کہ سعد اللہ مسیحا پانی پتی نے رامائن کے قصے کو فارسی میں نظم کیا تھا، لیکن وہ مثنوی اقبال کو کہیں سے دستیاب نہیں ہو سکی۔ اس لیے اگر ان کے کتب خانے میں موجود ہے تو چند روز کے لیے آریتن ارسال کی جائے۔ مہاراجہ کشن پرشاد کے کتب خانے میں ذکرہ مثنوی موجود نہ تھی، اس لیے یہ ارادہ تشنع تکمیل رہا۔ پھر 1921 میں بھگوت گیتا کا اردو ترجمہ کرنے کا خیال آیا، اور مہاراجہ کشن پرشاد کو تحریر کیا، صفحہ نمبر 451، سرکار نے میرا ترجمہ گایتری پسند فرمایا ہے، بانگ درا کی نظم آفتاب، میرے لیے یہ بات سرمایہ فخر و امتیاز ہے، افسوس کے سنسکرت الفاظ کی موسیقیت اردو زبان میں منتقل نہیں ہو سکتی، برحال غالباً اصل کا مفہوم اس میں آ گیا ہے۔ زمانے نے مساحت کی تو گیتا کا اردو ترجمہ کرنے کا قصد ہے، فیاضی کا فارسی ترجمہ تو حضور کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا، فیاضی کے کمال میں کسی کو شک ہے، مگر اس ترجمے میں اس نے گیتا کے مضامین اور اس کے انداز بیان کے ساتھ बिल्कुल इंसाफ नहीं किया, बल्कि मेरा तो यकीन है कि फयाजी गीता की रूह से ना आशना रहा। इसी तरह 1925 में अंग्रेजी में एक किताब बाअनवान इस्लाम मेरे नुक्ते नज़र से का इरादा किया, और इस सिलसिले में सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सम को तहरीर किया। कुछ मुद्दत हुई मैंने इज्तहाद पर एक मजमून लिखा था, मगर दौरान तहरीर में इसका एहसास हुआ कि यह मजमून इस कदर आसान नहीं जैसे मैंने इसे इब्तिदा में तसव्वुर किया था। इस पर तफसील से बहस करने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत में वो मजमून इस काबिल नहीं कि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बहुत सी बातें जिनको मुफस्सल लिखने की ज़रूरत है इस मजमून में नहायत मुख्तसर तौर पर महज इशारतन बयान की गई हैं। यही वजह है कि मैंने इसे आज तक शाया नहीं किया। अब मैं इंशाल्लाह इसे एक अंग्रेज़ी किताब की सूरत में मुंतकिल करने की कोशिश करूँगा, जिसका अनवान होगा इस्लाम मेरे नुक्ता नज़र से। इस अनवान से ये मकसूद ये है कि किताब का मजमून मेरी ज़ाती राय तसव्वुर किया जाए, जो मुमकिन है गलत हो। इसके अलावा एक और बात ये भी है कि मेरी उम्र ज़्यादातर मगरबी फ़लसफ़ा के मुतालिया में गुजरी है, और ये नुक्ता ख्याल एक हद तक तबीयत सानिया बन गया है। दनस्ता या ना दनस्ता, मैं इसी नुक्ता निगाह से हकायक इस्लाम का मुतालिया करता हूँ, और मुझे बारहा इसका तजर्बा हुआ है कि उर्दू में गुफ्तगु करते हुए मैं अपने माफी ज़मीर को अच्छी तरह अदा नहीं कर सकता। सफ़ा नंबर 452। इकबाल अपने तसनीफी अजायम को अमली जामे क्यों ना पहना सके, इसकी दो वजूहत थी। पहली ये कि इन्हीं फिक्रे माश से निजात ना मिलती थी, और दूसरी ये कि तलाश माश में इनका बेशतर वक़्त सरफ हो जाता था और तहकीक या पढ़ने लिखने की फुर्सत ना मिलती थी। इकबाल के गोशवारे आमदनी से जाहिर होता है कि 1916 से बेशतर इनकी आमदनी नाकाबले टैक्स थी। इनकी फाइल में आमदनी का सबसे पहला गोशवारा इनकम टैक्स साल 1917-18 से मुतल्लक है, जिसमें माली साल 16-17 की आमदनी की तशखीस की गई है। मुतज़क्रा साल में इनकी आमदनी 3614 रुपये तशखीस हुई, जिस पर इनको 94 रुपये इनकम टैक्स लगा। इस ज़माने में अभी किताबों से आमदनी शुरू ना हुई थी। आमदनी के ज़राए पेशे वकालत और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के लिए पर्चे बनाना था। आइंदा 8 बरसों में आमदनी का गोशवारा ये था। माली साल 1917-18 आमदनी 4225 रुपये, टैक्स 110 रुपये। 1918-1919 4183 रुपये, 107 रुपये टैक्स। माली साल 1919-20 11679 रुपये इनकम, 548 रुपये इनकम टैक्स। 1920-1921 माली साल 8679 रुपये इनकम, 271 रुपये 8 आने टैक्स। 1921-1922 10084 रुपये, 523 रुपये टैक्स। इस साल इसरार रमूज की रियलिटी इन्हें पहली बार मिली, जो 32 रुपये थी। 1922-1923 7192 रुपये, 224 रुपये टैक्स। 1923-1924 माली साल 13608 रुपये आमदन, 637 रुपये टैक्स। 1924-1925 13702 रुपये आमदन, 642 रुपये 52 पैसे टैक्स।